ओ श्री स्वामी विद्यारण्य मुनिजी द्वारा विरचित पंचदशी का प्रसंग चल रहा है। तत्व विवेक नामक पहले प्रकरण में 37वां श्लोक। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यत् भानमात्मनः स्वन्वयो व्यतिरेकस्तद् भाने अन्यानवभासनम् लिंगाभाने सुसुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः। व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभानमुच्यते तद्विवेकात् विविक्तः स्युः कोशः प्राणमनोधियः। तेहि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक्कृताः सुसुप्त्यभाने भानं तु समाधावात्मनोऽन्वयः। व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुसुप्त्यानवभासनम् यथा मुञ्जादिशि केवम् आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरत्रितया धीरहि परं ब्रह्मैव जायते। तो ब्रह्म मलिन सत्व में प्रतिबिंबित हुआ तो उसका नाम प्राज्ञ हुआ। प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित हुआ तो उसका नाम तेजस हुआ। तेजस स्थूल शरीर में प्रतिबिंबित हुआ तो उसका नाम विश्व हुआ। एक ही आत्मा स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोष में आबद्ध हो गया, सूक्ष्म शरीर अर्थात प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष में आबद्ध हो गया, बंध गया, फंस गया। कारण शरीर अर्थात आनंदमय कोष में बद्ध हो गया और तत्त्व कोष में आकर अपनी उपाधि कोष को ही अपना स्वरूप से वह अलग निश्चय नहीं कर पाया। कोष को और खुद को वह दोनों को मिलाकर एक मानने लग गया। तब आनंदमय कोष अर्थात कारण शरीर से एक मानने के कारण ये कहने लग गया कि मैं अज्ञानी हूं। सूक्ष्म शरीर से एक मानने के कारण मैं कर्ता हूं, भोक्ता हूं, पापी हूं, पुण्य आत्मा हूं, ऐसा अपने को निश्चय करने लगा। स्थूल शरीर से एक मानने के कारण मैं जन्मने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मोटाने वाला हूं, मैं दुबलाने वाला हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं युवा हूं, मैं बालक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पशु हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, इत्यादि अपने बारे में ऐसा निश्चय करने लगा। इस आत्मा का यह निश्चय गलत निश्चय है, सही निश्चय नहीं है। तो क्या करना है महाराज? तो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा इन पांच कोषों से अपने को अलग करना है। अलग करना है का मतलब कि इनसे मैं अलग हूं, ये निश्चय करना है। इन कोषों से मैं अलग हूं, ये निश्चय करने की प्रक्रिया क्या है? उस प्रक्रिया को वेदांत में अन्वय व्यतिरेक प्रक्रिया बोलते हैं। अन्वय व्यतिरेक से यह विश्व अपने को स्थूल शरीर से अलग निश्चय करे। अन्वय व्यतिरेक युक्ति से तेजस अपने को सूक्ष्म शरीर से अलग निश्चय करे। अन्वय व्यतिरेक युक्ति से प्रज्ञा अपने को कारण शरीर से भिन्न निश्चय करे। तो विश्व तेजस और प्राज्ञा ये तीनों का उपाधि से अलग होते ही यह आत्मा जो अभी तीन रूप में प्रतीत हो रहा था वह परम ब्रह्मैव जायते, वह एक रूप में निश्चय हो जाएगा और एक ही रूप में रहेगा। उस रूप का नाम वेदांत ने ब्रह्म कहा, परम ब्रह्मैव जायते। ब्रह्म सन ब्रह्माप्यते, ब्रह्म से ही निकले थे, उपाधि से अलग होते ही वो ब्रह्म रूप में ही अवस्थित हो जाएंगे। तीन नाम वाला ये जीवात्मा ब्रह्म रूप में निश्चय करके ब्रह्मी स्थिति में रहना ही इस आत्मा की मुक्ति है। वेदांत में इसके अलावा कोई दूसरी मुक्ति नहीं है। तो वो बात ये 37वें श्लोक के द्वारा विद्यारण्य मुनि ने कही, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंच कोश विवेकतः। अन्वय व्यतिरेक युक्ति के द्वारा, युक्ति माने चाबी है, वो चाबी का प्रयोग करो भाई। ये कोई अलीबाबा 40 चोर का जो दरवाजा नहीं है कि सिम सिम खुल जा करके खुल जाए, ये तो चाबी से ही खोलना पड़ेगा, तो युक्ति से ही खोलना पड़ेगा, मंत्रों से खुलने वाला नहीं है, तंत्रों से खुलने वाला नहीं है, युक्ति से खुलेगा ये। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकता स्वात्मानं तत उद्धृत्य, मुमुक्षु अपने आप को उन कोषों से अलग करे, उद्धार करे। कोषों में फंसा है ना, फंसे हुए, तो उनसे उसको अलग करे। तो अलग करना ही आत्मानं उद्धृत्य, उद्धार करना है, इसलिए गीता में भी उद्धार शब्द का प्रयोग कर दिया है। उद्धरेत आत्मनात्मानम, कोई व्यक्ति, कोई और व्यक्ति तुम्हारा उद्धार करने नहीं आएगा। तुम खुद फंसे हो तो तुम्हारा उद्धार करने कोई दूसरा क्यों आएगा? अपना उद्धार तो तुमको अपने ही करना पड़ेगा, खुद ही खुद का उद्धार करना पड़ेगा। उद्धृत्य निकालो। बचपन का एक अनुभव मुझे स्मरण हुआ आया, तुम्हें सुना दूं। हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होते हैं, बचपन में जीवन में क्या क्या अनुभव हुए हैं, और बहुत से अनुभव हैं वो विस्मृत हो जाते हैं, प्रसंगवत फिर वह उद्भूत होते हैं संस्कार। पढ़ते थे स्कूल में, गांव के बगल में तालाब थे बड़े बड़े, ताल तलैया बोलते हैं ना, ताल तलैया, छोटे छोटे को तलैया, थोड़े बड़े को ताल, तो ताल शब्द ही प्रयोग करते हैं बड़े सरोवरों को। तो जहां स्कूल पढ़ते हैं वहां से कुछ दूरी एक डेढ़ माइल पर वो ताल था। गर्मी के सीजन और छुट्टी हो गया तो चलो पानी में तैरने के लिए, नहाने के लिए जाओ, बच्चे ना हैं। उस तलैया के, उस ताल के बगल में कीचड़ होता है, दलदला होता है, दलदला है ना, क्योंकि खेत का ताल है, तालाब है, वो कोई बांध बनाकर बनाए हुआ कृत्रिम तालाब तो है ही नहीं, और बड़े बड़े कमल के जो फूल खिलते हैं उसके कमल के जड़ होते हैं, कमल के बड़े बड़े जड़ होते हैं, उसको सिंधी लोग बहुत खाते हैं, भीष क्या बोलते हैं वो, भी बोलते हैं हाँ। तो वो भी बोलते हैं, वो सिंधी कड़ी में वो अनिवार्य पड़ता है, पकौड़ा भी बनाते हैं, मिक्सर अचार में भी वो उसका ऐड करते हैं, आते हैं ना मिक्सर अचार, खट्टी अचार उसमें होता है। वो जो कीचड़ है, उस कीचड़े कीचड़ में फैलता है वो जड़, तो तुरंत निकालो, उस कीचड़ में से निकालो, धो के खाओ, बड़ा आनंद आता है। या तो फिर सिंघाड़े आप लोगों ने खाए होंगे, पानी में होते हैं ना सिंघाड़े फल, तो उसको खाओ कितना अच्छा लगता है। उसी तरह का वो भी होता है, तो वो निकालो कीचड़ में से, धो, और ककड़ी जिस तरह खाते हो चबाओ, बड़ा नरम नरम, ठंडा भी हो, कमल तो शीतल है। तो जाते थे बच्चे लोग सब निकाले, तो एक समय की बात है, उस निकालने के चक्कर में दलदल में फंस गए, खोदते खोदते और आगे चले गए और तो नीचे दलदल, यहां तक कंठ तक दलदल में फंस गए। अब करें क्या, निकले कैसे, बाहर निकले कैसे, पांव तो चलता ही नहीं, मिट्टी से जाम हो गया वो दलदल की मिट्टी से। खड़े हैं वो दलदल में, इतनी तक नीचे गिर गए। शरीर तो वहीं खड़ा हो गया खंभे की तरह, हलचल ही नहीं करता है। अब कैसे निकले, बच्चे ठहरे, फंस गया नहीं। सब लोग कहने लगे पहले ही कहा था गहराई में मत जा, गहराई में मत जा, गया अब खा। और कोई दूसरा वहां आकर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां आएगा वो भी फंसेगा। तो और जो साथी बच्चे थे वो रोते हुए हल्ला करते हुए स्कूल में गए और वो कह दिया कि फलाना व्यक्ति तो दलदल में फंसा हुआ है, गड़ा है, निकल नहीं पा रहा है, रो रहा है। बेचारे मास्टर दौड़े के आ गए, स्कूल के मास्टर देखा कैसे निकाले। अब कोई लंबी रस्सी होती तो रस्सी फेंके और उसको पकड़े और वो लोग खींचे, अब रस्सी भी वहां उपलब्ध नहीं था। तो एक मास्टर ने कहा अरे भाई पांव मत चला, उस दलदल में सो जा और हाथ से हाथ ऊपर कर, फिर सर्प जैसे खिसकता है सर्पता है, उसी तरह करने की कोशिश कर। तो उसे में शरीर छोड़ दिया ढीला और माथी ऊपर जो दलदल था, हाथ तो खुले थे, पांव ही जाम हो गया था कमर। तो उसके कीचड़ में हाथ ऐसे गाड़ा, फिर ऐसे खिसकने की कोशिश की तो निकल गया। तो पूरा शरीर तो वो खिसकते 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 सर्प की तरह बड़े मुश्किल से वो दलदल से किनारे में आए। तो युक्ति से ही निकला जा सकता है, युक्ति ना लगाओ तो इस दलदल से निकलना मुश्किल है। इसी को बोलते हैं स्वात्मानम तथा उद्धृत्य, अपने आप को अपने आप उद्धार करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति उपाय बता सकता है, बस उद्धार तो अपने को ही करना पड़ेगा ना, वो उपाय बता देगा, युक्ति बता देगा। परम ब्रह्मैव प्रपद्यते, परम ब्रह्म प्रपद्यते, तुम इन कोष से अपने को खुद को निकाल सको तो तुम फिर ब्रह्म ही हो जाओ, क्योंकि ब्रह्म ही थे। ब्रह्म से प्राज्ञा बने, प्राज्ञा से तेजस बने, तेजस से विश्व बने थे, और विश्व के कीचड़ में फंसे थे। अब तुम यहां से विश्व से तेजस में जाओ, तेजस से प्राज्ञा में जाओ, प्राज्ञा से जब उपाधियों का बात करोगे तो ब्रह्म ब्रह्म ही बजाए थे। महाराज वो युक्ति अन्वय व्यतिरिक युक्ति करनी कैसी है, क्या युक्ति है बताइए। ये क्रियात्मक नहीं है, अन्वय व्यतिरिक युक्ति क्रियात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक है, विचारात्मक है, क्योंकि किसी कर्म से या क्रिया से फंसा नहीं है, अविचार से फंसा है, विचार से निकलना है। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद भानमात्मनः स्वन्वयो व्यतिरेकस् तद्भाने अन्य अनवभासनम्। अन्वय शब्द का अर्थ होता है अनुगत, समझे ने, अन्वय शब्द का अर्थ अनुगत, व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है अनुगत। अब ये दोनों ही संस्कृत का शब्द प्रयोग हुआ है। अन्वय शब्द का अर्थ होता है रहना, पहुंचना, व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है न पहुंचना, न रहना। जो वस्तु जहां रहता है उस वस्तु का वहां अन्वय होता है, जो वस्तु जहां नहीं रहता है उस वस्तु का वहां व्यतिरेक होता है। समझ गए कि नहीं? जो वस्तु जहां रहता है उस वस्तु का वहां अन्वय, जो वस्तु का जहां नहीं रहता, जो वस्तु जहां नहीं रहता उस वस्तु का वहां व्यतिरेक। इस हॉल में गिरीश भाई रहते हैं, रह रहे हैं, तो इस समय गिरीश भाई का इस हॉल में रहने के कारण गिरीश भाई का क्या हो गया? अन्वय हो गया। घर में गिरीश भाई इस समय नहीं है तो घर में गिरीश भाई का व्यतिरेक हो गया। यह अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ इतना ही है। जिसका जहां उपस्थिति है वहां अन्वय, जहां उपस्थिति नहीं है वहां व्यतिरेक। अब ये नियम और दूसरी बात निश्चय कर लेना, जिसका जहां अन्वय होता है, अन्वय को सत कहते हैं, जिसका जहां व्यतिरेक होता है व्यतिरेक को असत कहते हैं। कोई वस्तु एक बार भी व्यतिरेक हो जाता है तो वह असत कोटि में चला जाता है। समझे कि नहीं? अन्वय कहीं भी किसी भी हालत में व्यतिरिक नहीं होता, इसीलिए सत्य कहलाता है। अन्वय को सत्य कहते हैं, व्यतिरिक को असत कहते हैं। अब शरीर के बारे में विचार करना है, क्योंकि पंचकोश विचार कर रहे हो ना। शरीर का नाम क्या है? अन्नमय कोष। अब ये अन्नमय कोष के बारे में विचार करना है कि अन्नमय कोष सत है कि असत है? अन्नमय कोष सत है कि असत है, ये विचार करना है। सारी दुनिया तो सत ही कह रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं? सारी दुनिया अन्नमय कोष को क्या कह रहे हैं? सत ही कह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। यूं कहने में तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन सत कहने मात्र से सत नहीं होता। सत होने के लिए इसका अन्वय होना चाहिए। यदि ये एक जगह व्यतिरिक्त हो गया, किसी एक स्थान में इसका व्यतिरेक होता है, तो यह असत कोटि में चला जाता है। अब इसका व्यतिरेक कहां होता है? इस स्थूल शरीर का व्यतिरेक कहां होता है? स्वप्न में। कोई कह रहे हैं स्वप्ने, स्वप्न अवस्था में स्थूल देहस्य अभाने, जिस शरीर का तुमको अभी भान हो रहा है, यहां तुम्हें अपना भी भान हो रहा है। अभी हो रहा है कि नहीं बोलो? यहां अभी जागृत अवस्था में तुम्हें अपना भी भान हो रहा है, मैं हूं, और शरीर का भी भान हो रहा है कि देह है, दोनों का भान हो रहा है कि नहीं? दोनों का भान होने के कारण बहुत को भ्रांति क्या होती है कि दोनों सत्य हैं। लेकिन ये दो में से कौन सा सत्य है, इसको निश्चय करने के लिए स्वप्न में इस शरीर का इसी रूप में भान होता है कि नहीं, क्या इस शरीर का इसी रूप में भान होता है स्वप्न में? स्वप्ने स्थूल देहस्य अभाने, स्वप्नावस्था में स्थूल देह का आभान होने पर भी आत्मनः भानम, ध्यान देना, स्वप्नावस्था में स्थूल शरीर के भान न होने पर, आभान होने पर भी आत्मनः भानम, तो उसका अन्वय हो गया। किसका? जिसका भान होता है उसका अन्वय होता है। तो जागृत में आत्मा का भान हो रहा था, स्वप्न में भी आत्मा का भान होता ही रहता है, होता है कि नहीं? लेकिन इसीलिए स्वप्नावस्था में आत्मा का अन्वय हो गया, लेकिन स अन्वय, ये देख लो, यद भानम आत्मनः स आत्मनः अन्वय, आत्मा के भान हो रहे होते रहने के कारण आत्मा का स्वप्न में अन्वय हो गया। व्यतिरेकस्तु, फिर व्यतिरेक किसका करोगे तू माने? किंतु जिस समय आत्मा का भान हो रहा है उस समय में स्थूल शरीर का भान न होना स्थूल शरीर का व्यतिरेक हो गया। सीधी सी बात भाई, इस समय तुम्हें दोनों का भान हो रहा है, स्थूल शरीर का भान हो रहा है, आत्मा का भी भान हो रहा है। दोनों के भान होने के चलते हम ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं इस समय कि सत्य कौन है और असत्य कौन है, निश्चय नहीं कर पा रहे। और निश्चय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अन्वय व्यतिरिक युक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। भाई तुम्हें बुखार है कि नहीं जानने के लिए थर्मामीटर लगाना पड़ेगा, नहीं? कितनी टेम्परेचर है, थर्मामीटर लगाओगे तभी ना कितना टेम्परेचर है ये पता चलेगा। अभी तुम्हें शुगर कितनी है वो जानने के लिए वन टच का प्रयोग करना पड़ेगा ना? तुरंत लोही ब्लड का एक टिप्पा लो, एक बूंद लाकर उसमें लगा दो और तुरंत कैलकुलेशन करके काउंट करके बता देता है तो और तुमको पता चल जाएगा हाँ शुगर तो बढ़ गया है, कितना है, इतना है, 160 है, 110 है, 120 है, आखिर टेस्ट करोगे तब ना पता चल जाएगा इतना है। अब ये दोनों का भान हो रहा है तो दोनों में से कौन सही है इसके लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा ना, टेस्ट करोगे कैसे? बोले अब इसी तरह स्वप्न में भी दोनों का एक साथ भान होता है कि नहीं? यदि स्वप्न में भी दोनों का इसी तरह भान होता है तब तो दोनों सही है, समझे कि नहीं? एक का भान हो रहा है एक का भान नहीं हो रहा है तो जिसका भान नहीं होता वो गलत है, जिसका भान हो रहा है उसका वो सही है। यही तो अन्वय व्यतिरिक, जिसका भान नहीं होगा वो व्यतिरिक हो गया, जिसका भान हो रहा है वो अन्वय हो गया। स्वप्न में आत्मा का भान होता है, स्थूल शरीर का भान नहीं होता। लेकिन तुम्हें लगेगा कि नहीं स्वप्न में भी तो स्थूल शरीर का भान होता है महाराज। मैं तुमसे पूछता हूं, स्वप्न देखने से पहले जब तक तुम जागृत में हो, खाना खाके बिस्तर में जिस समय सो रहे हो, अभी स्वप्न नहीं देख रहे हो, जाग रहे हो, आंख खुली है, कान काम कर रही है, उस समय में तुम्हें मैं हूं ये भान भी होता है, मेरा शरीर बिस्तर में सो रहा है ये भान भी होता है कि नहीं है? दोनों भान होता है। उसके बाद जब आप सो जाते हो और सपना देखने लगते हो, क्या इसी तरह मैं सो रहा हूं, मैं हूं, मेरा शरीर भी बिस्तर में लेटा हुआ है ये भान होता है, ये भान होता है? क्या होता है? या तो ऑफिस का भान होगा, या तुम ऑफिस में बैठे हुए होंगे, या बाजार में घूमते हुए होंगे, या घर में घूमते हुए होंगे, या ब्रह्मपुरी आश्रम में सत्संग सुनते हुए होंगे, बिस्तर में लेटे हुए का अनुभव तो नहीं होगा ना? जबकि शरीर कहां लेटा है? बिस्तर में लेटा है। जबकि तुमको स्वप्न में अनुभव क्या हो रहा है? शरीर बाजार में घूम रहा है। इसका मतलब शरीर का भान हो रहा है। बोलो, तुम्हें शरीर का भान होता होता तो ये भान होता कि बिस्तर में लेटा हुआ है, यही भान होता, क्योंकि शरीर बिस्तर में लेटा है। उस शरीर का तो भान नहीं हो रहा है ना, स्वप्न में हो रहा है। बोलो, इसका मतलब शरीर व्यतिरिक है, इसका मतलब शरीर गलत है, तुम सही हो। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? शरीर गलत है, तुम सही हो, क्योंकि शरीर व्यतिरिक कोटि में चला गया, अभान की कोटि में चला गया, और जबकि शरीर के अभान होते हुए तुम अपना भान हो ही रहा है, और अपना भान होते हुए भी शरीर का अभान हो रहा है, तो जिस अवस्था में जिसका भान हो रहा है वो अन्वय, जिस अवस्था में जिसका अभान हो रहा है वो व्यतिरिक। तो स्थूल शरीर व्यतिरिक कोटि में एक बार गया तो हमेशा ही वो गलत है, बस इतना निश्चय कर लो। इस समय भान हुआ वो इतना होने मात्र से ये सत्य है नहीं मान लेना, ये सत्य होने के लिए तो स्वप्न में भी इसी रूप से भान होना चाहिए। जबकि तुम अपने बारे में जिस तरह अभी भान हो रहा है उसी तरह स्वप्न में भी भान होता है। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यत् भानम आत्मना सो अन्वय, आत्मना अन्वय, आत्मना यत् भानम तद आत्मना अन्वय। अब जिस समय आत्मा का स्पष्ट भान हो रहा था उसी समय स्थूल शरीर का भान नहीं हो रहा था, तो स्थूल शरीर व्यतिरेक। अब फिर दूसरे प्रयोग करो, लिंगाभाने सुसुप्तौ स्यात् आत्मनो भान अन्वय। स्वप्न में स्थूल शरीर का अभान, इसलिए स्थूल शरीर का व्यतिरिक्त, आत्मा का भान, इसलिए आत्मा का अन्वय। अब दूसरी अवस्था सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्तौ गहरी निद्रा के समय में, लिंगाभाने सुसुप्तौ, तुम जब गहरी निद्रा में जाते हो तो वहां टोटल सूक्ष्म शरीर का भी अभान रहता है, आंख का भान होता है, कान का भान रहता है। बोलो, सुसुप्ति अवस्था में आंख का भान, कान का भान, नाक का भान, किसी चीज का भान रहता है तो क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर का अभान रह गया कि नहीं, कहां सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभान हो गया। लिंगावान माने लिंग शरीर का अभान, माने सूक्ष्म शरीर का अभान। लिंगाभान सुषुप्तो स्यात् आत्मनो भान मन्वया, लेकिन किसी को भी ये नहीं होता सुषुप्ति में मैं नहीं था। सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा का भान होता रहता है। आत्मा का भान होता रहता है ये कैसे सिद्ध करोगे, बोले क्योंकि जागने के बाद प्रतिभिज्ञा होती है, स्मृति होती है, अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती। लिंगाभान सुसुप्तो स्यात् आत्मनो भान सो अन्वया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि सुसुप्ति अवस्था में मैं था ही नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। सुसुप्ति अवस्था में मैं था ही नहीं ये कोई भी नहीं कह सकता। और सुषुप्ति अवस्था में यदि तुम बिल्कुल नहीं थे तो सुषुप्ति अवस्था का अनुभव किसने किया तुम्हें बता देना पड़ेगा। बोलो, गहरी निद्रा का अनुभव तुम यदि गहरी निद्रा में उस अवस्था में तुम यदि वहां नहीं थे तो उस गहरी निद्रा की अवस्था का अनुभव किसको हुआ ये तुम्हें बता देना पड़ेगा। जब बताना होगा तो क्या बताओगे, मुझे हुआ ये कहना पड़ेगा कि नहीं तुमको, गहरे निद्रा में कुछ भान नहीं हुआ इसका भान किसको हुआ ये पूछा जाए तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ भरोसे के साथ ये कहोगे कि नहीं उसका भान मुझे हुआ। इसका मतलब तुम थे ये बात तुम्हारी बातों से प्रमाणित तो हो गई कि नहीं है, मैं था, मैं न होता तो मुझे अनुभव भी नहीं होता ना, मैं न होता तो मुझे अनुभव भी नहीं होता, मुझे अनुभव हुआ इसका मतलब मैं था। तो ये हो गया आत्मा का अन्वय, जैसे अभी आत्मा का अन्वय है, स्वप्न में भी आत्मा का अन्वय रहता है, सुषुप्ति में भी आत्मा का अन्वय रहता है, लेकिन स्वप्न में स्थूल शरीर का अन्वय नहीं रहता, व्यतिरेक हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का भान नहीं रहता, व्यतिरेक हो गया। अब तद विवेकात विविक्ता स्यु कोशा प्राण मनोधिया, या किसी ने पूछा होगा आपने तो पंचकोश विवेक करने के लिए अन्वय वेतरी युक्ति का प्रयोग कर रहे थे तो क्रमशः अन्नमय कोष का वेतरेक स्वप्नावस्था में सिद्ध कर दिया तो अन्नमय कोष के बाद प्राणमय कोष आना चाहिए था, प्राणमय कोष का वेतरेक, प्राणमय कोष के बाद मनोमय कोष का क्रम आना चाहिए, मनोमय कोष के बाद विज्ञानमय कोष का व्यतिरेक सिद्ध करना चाहिए था क्रमशः। तो आपने न प्राणमय कोष का व्यतिरेक सिद्ध किया, न मनोमय कोष का व्यतिरेक सिद्ध किया, न प्राणमय माने विज्ञानमय कोष का व्यतिरेक सिद्ध किया, आपने तो सीधे जंप मारकर सूक्ष्म शरीर का सुषुप्ति अवस्था में व्यतिरेक सिद्ध कर दिया। प्रतिज्ञा क्या की थी, पंचकोशों का व्यतिरेक सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा के अनुरूप अन्नमय कोष का व्यतिरेक तो कर दिया स्वप्न में, अब क्रमशः प्रतिज्ञा अनुसार प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष का व्यतिरेक करना चाहिए था, आपने सीधे सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक क्यों कर दिया, लिंग शरीर का व्यतिरेक क्यों कर दिया, प्रतिज्ञा हानि, ऐसा कोई प्रश्न करे तो विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं, बेटा तुम समझते नहीं हो, सूक्ष्म शरीर के व्यतिरेक से ही, लिंग शरीर के व्यतिरेक से ही प्राणमय व्यतिरिक्त हो गया, प्राणमय कोष व्यतिरिक्त हो गया, मनोमय कोष व्यतिरिक्त हो गया और विज्ञानमय कोष भी व्यतिरिक्त हो गया, क्योंकि यही सूक्ष्म शरीर का ही तीन अवस्था है, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, ये तीन कोष सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और सूक्ष्म शरीर को हटा दिया, व्यतिरिक्त कर दिया, तो तीनों कोष अपने आप ही व्यतिरिक्त तो हुए कि नहीं, बोलो है? मान लो कपड़े में कुछ गंदगी लगी है, किसी ने कह दिया तुम्हारे कपड़े में गंदगी लगी है, ये गंदगी को हटाओ है? अब गंदगी को हटाने के जगह तुमने कपड़े को ही हटा दी, तो कहा था तुमको गंदगी हटाओ कहा था कि कपड़ा हटाओ कहा था? बोलो, गंदगी हटाओ कहा था, तो गंदगी ना हटाकर कपड़ा क्यों हटाया? बोले कपड़ा हटाना ही गंदगी हटाना है, यदि कपड़ा हट गया तो गंदगी अपने आप हट गया कि नहीं है? यदि कपड़ा हट गया तो गंदगी तो अपने आप ही हट गया, उसी कपड़े की ही गंदी अवस्था है गंदगी। इसी तरह सूक्ष्म शरीर को, लिंग शरीर को व्यतिरिक्त कर दिया तो प्राणमय कोष की व्यतिरिक्त तो हो गया कि नहीं? सूक्ष्म शरीर का व्यतिरिक्त कर दिया, मनोमय कोष का व्यतिरिक्त हो गया कि नहीं? सूक्ष्म शरीर का व्यतिरिक्त कर दिया, विज्ञानमय कोष का व्यतिरिक्त हो गया कि नहीं? क्योंकि प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष तीन कोष एक ही सूक्ष्म शरीर में रह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को हटा दिया तो तीनों कोष हट गए, तो प्रतिज्ञा हानि कहां हुई है? पंचकोष विवेक करने के क्रम में अन्नमय कोष का हमने स्वप्न में व्यतिरिक्त कर दिया, मनोमय प्राणमय विज्ञानमय कोष का व्यतिरिक्त हमने सूक्ष्म शरीर का सुषुप्ति में व्यतिरिक्त करके, तीनों कोषों का भी व्यतिरिक्त करके चारों कोषों का व्यतिरिक्त कर दिया। तद विवेकात् विविक्तः स्युः कोषा प्राण मनो धियः ते ही तत्र गुणावस्था भेदमात्रा पृथक कृतः। अब अंतिम कोष, चार कोष व्यतिरिक्त हो गए ना, व्यतिरिक्त का अर्थ समझ में आया कि नहीं? गलत, असत्य, मिथ्या, झूठा, न रहा ना, अन्वय का अर्थ समझ में आया कि नहीं? सत्य, रहना, न रहने वाले को व्यतिरिक्त, रहने वाले को अन्वय। जागृत में आत्मा और अन्नमय कोष दोनों रह रहे थे, स्वप्न में जाते ही अन्नमय कोष छूट गया, हट गया, तुम रह गए स्वप्न में। अब स्वप्न में प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष और तुम चारों रह रहे थे, अब तुम चले गए सुषुप्ति में, गहरे निद्रा में हैं, तो ये तीनों को सूक्ष्म शरीर छूट गया, तुम्हारे साथ गया, तुमको साथ दिया स्थूल शरीर ने, स्थूल शरीर में स्वप्न में साथ नहीं दिया, मनोमय प्राणमय विज्ञानमय कोष ने सुषुप्ति में साथ नहीं दिया। अब हमारा सुषुप्ति अवस्था में आनंदमय कोष ने तो साथ दिया है ना, उसको तो सत्य मानना चाहिए, बोले देख लेते हैं भाई उसको भी, तुमको कब तक साथ देता है वो आनंदमय कोष, देख लेते हैं। तुम जिस समय समाधि में जाओगे, जिस समय तुम समाधि में जाओगे, आनंदमय को साथ देता है कि नहीं, वहां देख लेना भाई। यदि समाधि में भी आनंदमय को उसने साथ दिया तब तो आनंदमय को सही है, और समाधि में तुम्हारे जाते ही आनंदमय कोष ने साथ नहीं दिया है तो आनंदमय कोष भी अन्नमय कोष की तरह गलत है। बस सुसुप्ति अभाने भानम तु समाधो आत्मनुअन्वय, समाधो समाधि अवस्था में सुसुप्ति अवस्था का आह्वान रहता है, भान नहीं रहता। न किंचित अवेदिशम, ये भान समाधि में नहीं रहेगा, लेकिन मैं हूं ये भान रहेगा समाधि में। तो आत्मा का भान, आत्मा का अन्वय, और जिस समाधि में आत्मा का अनुभव होता रहता है उस समय में कारण शरीर का, आनंदमय कोष का यानी कारण शरीर का भान नहीं रहता, अज्ञान का भान नहीं रहता समाधि में। समाधि में अज्ञान का भान न होने के कारण कारण शरीर यानी आनंदमय कोष का व्यतिरेक, समझे कि नहीं? तो क्या हुआ बोलो, स्थूल शरीर का स्वप्नावस्था में व्यतिरेक, सूक्ष्म शरीर का सुसुप्ति अवस्था में व्यतिरेक, कारण शरीर का समाधि अवस्था में व्यतिरेक, आत्मा का जागृत में भी भान, आत्मा का स्वप्न में भी भान, आत्मा का सुसुप्ति में भी भान, आत्मा का समाधि में भी भान, आत्मा का एक जगह भी अभान सिद्ध करो तो आत्मा भी गलत हो जाएगा। और जबकि आत्मा का कहीं भी अभान सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का अभान जो सिद्ध करने जाओगे उस अभान का भान किसको होगा? आत्मा को होगा कि अनात्मा को? अनात्मा को तो अभान का भान होगा नहीं है, अभान का भान किसको होगा? आत्मा को। आत्मा हुए बिना अभान का भान कैसे होगा? इसका मतलब आत्मा का अभान कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए आत्मा का व्यतिरेक कहीं भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तुम अमेरिका जाओ हो, वहां आत्मा का अभान होगा कि नहीं है? बोलो, वहां अमेरिका जाओ तो आत्मा का आह्वान रहेगा? लोग प्रश्न करते हैं बिना मतलब का, महाराज आप कहते हो आत्मा सर्वत्र है, तो यहां हूं तो यहां हूं ये तो भान हो रहा है, तो सर्वत्र होता छत में हूं ये भान क्यों नहीं होता है? इस समय मैं घर में हूं ये भान हो रहा है, है? इसका मतलब आत्मा घर में है? मैं उसको कहता हूं आत्मा घर में है, तुम घर चले जाओ भान होगा कि नहीं? बोलो, प्रूफ हो गया ना, प्रमाण हो गया ना, तुम जाओ घर में, आत्मा घर में है ये भान होगा कि नहीं? तो तुम कैसे कहते हो कि आत्मा घर में नहीं है? इसके ऊपर छत में आत्मा है कि नहीं? सर्वत्र है तो फिर छत में भी है ये भान होना चाहिए। मैं कहता हूं छत में चले जाओ, छत में जाने के बाद यहां आत्मा नहीं है ये भान तुमको होवे तो हमको बताना। है? होगा है? तुम घर से यहां आए, सड़क में आत्मा मिली कि नहीं तुमको? हैं? कहीं भी यहां पर आत्मा नहीं थी ये भान हुआ तुम्हें? इसका मतलब घर से यहां तक आत्मा सब व्यापक है ये सिद्ध हुआ कि नहीं? यदि बीच में कहीं आत्मा न होती तो तुम्हें वहां पर भान होता कि अरे यहां पर आत्मा नहीं है, ये भान होना चाहिए था। लेकिन ऐसा भान हुआ कहीं, आत्मा यहां पर नहीं, ऐसा भान तुम्हें हुआ? इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? आत्मा सर्वत्र है। जाओ अमेरिका, आत्मा मिलेगा कि नहीं वहां? है तो आत्मा अमेरिका में है कि नहीं है? ये बात सिद्ध करने के लिए तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा कि नहीं? जाओ अमेरिका और जाकर कहो कि महाराज यहां आत्मा नहीं है, टेलीफोन कर दो, तब हम मान लेंगे भाई आत्मा। इसलिए आत्मा का व्यतिरेक कभी भी नहीं होता। और क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।